कल तक अपन 109 से 112 की गाथाओं पर चर्चा कर रहे थे। जिनमें बताया गया है कि जो परद्रव्य कर्मों का जो बंद होता है उनका कर्ता कौन है, तो उनके कर्तृत्व में चार प्रकार के सामान्य प्रत्यय और 13 प्रकार के विशेष प्रत्यय बताए गए थे। चार प्रत्ययों में मिथ्यात्व, अवरति, कषाय और योग हैं और उनके 13 भेदों में 13 गुण स्थान हैं और उससे अंत में ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीव और प्रत्यय, जीव जो बंद का कारण है वो प्रत्यय है, जीव नहीं है। अब कोई ऐसा सोच सकता है कि यदि ये प्रत्यय जीव से अनन्य हो, अनन्य माने एक हो, तो फिर आत्मा को उनका कर्ता कहा जा सकता है, क्योंकि इसके मन में ये बात है कि मैं नहीं करूंगा कर्म तो उन कर्मों का फल मुझे क्यों भोगना पड़ेगा, और ऐसा मानता है कि कर्मों का फल तो मैं भोग ही रहा हूं, है ना, इसलिए करना भी मेरे ही हाथ में होना चाहिए, क्योंकि यदि दूसरे के किए का फल कोई दूसरा आदमी भोगने लग जाए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो चूंकि मैं भोग रहा हूं इसका मतलब यह है कि मैं ही मुझे कर्ता भी होना चाहिए। यदि एक करे गलती और दूसरा भोगे तो इस सिद्धांत के हिसाब से ऐसा हो जाएगा, करे मूछ वाला पकड़ा जाए दाढ़ी वाला, और जो न्याय लोक में भी मान्य नहीं है। बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि वो सर्वथा क्षणिकवादी हैं। वो कहते हैं प्रति क्षण दुनिया बदल जाती है, जो मैं कल था वो आज नहीं हूं, एक मिनट पहले का हुक्मजन बिल्कुल अलग था, दूसरे मिनट के बाद का हुक्मजन बिल्कुल अलग है। फिर अपन उनसे पूछते हैं भैया ऐसा है तो जो हम कल की बात हमें याद है वो क्यों है, तो उसका वो जवाब देते हैं वो जो पिछला हुक्मचंद है वो अगले हुक्मचंद को सारा चार्ज समझा के जाता है। जैसे कि एक कर्मचारी होता है वो ड्यूटी पे से जाता है, रेलवे का बुकिंग करने वाला है तो वो टिकट बेचता है, फिर जब वो उसकी ड्यूटी खत्म होती है तो दूसरा आदमी ड्यूटी पे आता है तो उसे रोजाना वो चार्ज समझाना पड़ता है कि देखिए इतने पैसे हैं, इतने टिकट बिक गए हैं, ये सब को बताना पड़ता है, क्योंकि इसका जिम्मेवार कौन होगा, कोई घट जाएंगे पैसे तो बाद में कौन करेंगे। तो उसे बोलते हैं वो संस्कार, कि पहला आदमी दूसरे को अपने संस्कार दे जाता है, उसकी वजह से तुम्हें ये भ्रम हो जाता है ये दोनों एक है और वास्तव में है बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए आचार्य संबंध भद्र ने आप मीमांसा में बहुत मजाक उड़ाई है और ऐसा कहा है कि फिर तो ऐसे ही हो जाएगा ना कि एक आदमी ने मारने का विचार किया और वो तो उसी समय नष्ट हो गया, जिसने मारा वो दूसरा था, फिर उसकी वजह से उसे जो बंद हुआ वो तीसरा था, क्योंकि वो तो मार के उसी वक्त खत्म हो गया, और जो फिर जेल में गया था वो छूटा नहीं, वो छूटने वाला दूसरा ही था। ऐसा इनकी कारिका है, ना हिनस्ति अनविशात्री, जो मारने का विचार करता है वो अलग है, और मारने वाला अलग है, और बद्धम चित्तम न मुंचते, बंद हुआ वो चित्त माने आत्मा अलग है, और जो जेल से छूटेगा वो आत्मा अलग है। बद्धम चित्तम न मुंचते, बंधा हुआ चित्त मुक्त नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि नित्यता तो माननी पड़ेगी, कि वो एक ही आदमी बदल करके भी कंटिन्यूटी में रहा है, अन्यथा कौन अपराधी है इसका निर्णय करना बिल्कुल संभव नहीं होगा। तो सारी न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो ऐसे ही जो करे सो भोगे, तो उनके यहां ये सिद्धांत हो गया कि जो करेगा वो भोगेगा नहीं, क्योंकि वो तो करते ही खत्म हो गया, और जो अगला आएगा वो भोगना पड़ेगा उसे। एक आदमी की एक कंपनी है, दुकान है, धंधा पानी है ना, फर्में चलती हैं। अब उसने बैंक से कर्जा लिया है, और वो कर्जा की जो चुकाने की डेट आई उसके पहले मर गया, तो बैंक का पैसा मारा जाएगा क्यों? कि नहीं, जो उस कंपनी का उत्तरदायी होगा, जो उसका माल लेगा, जो कंपनी को लेगा, वो कर्जा चुकाएगा, तो उसके उत्तराधिकारी को कर्जा चुकाना पड़ता है ना। लेकिन एक आदमी ने हत्या की हो तो उसके उत्तराधिकारी को जेल नहीं जाना पड़ता, माने वो उसने किसी संस्था की तरफ से हत्या नहीं की, वो उसने फर्म की तरफ से हत्या नहीं की है, वो हत्यारा व्यक्तिगत है, यद्यपि झगड़ा फर्म के कारण ही हुआ होगा, है ना। फिर भी ऐसा नियम है कि कर्जा तो चुकाना पड़ेगा उसे, नहीं तो वो फर्म का मालिक नहीं बन सकता, लेकिन वो जेल नहीं जाएगा, बस केस वहीं खत्म होता देगा। तो वो कहते हैं कि जी आत्मा भोग रहा हूं मैं कर्म को अनादिकाल से आज तक, और पूर्व कर्म के भोग रहा हूं ना, किया होगा मैंने कोई भयंकर अपराध, भयंकर गतभव में कहती ना, मैंने कोई भयंकर अपराध गतभव में किया होगा, उसी के फल में यह संयोग मुझे मिला है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो हम तो ये मानते हैं, तो जब हमको भोगना पड़ रहा है तो हमारा कर्तव्य भी हमारे हाथ में होना चाहिए, वो तो भोगने वाले हेतु से करने वाली बात को स्वीकार करना चाहता है, अपना कर्तव्य तो उस वक्त थोपना चाहता है। तो आचार्य कहते हैं कि भाई न तूने किया है और न तूने भोगा है, जिसको तू भोगना मानता है वो भी भोगना नहीं है, और जिसको तू करना मानता है वो भी करना नहीं है। कर्म बधा, तो कहते वो कारमान बैगना है, जो कर्म रूप प्रणमन तुम्हें, तो कर्म रूप प्रणमन को तूने भोगा कि कारमान बैगना में, तो समझना, वो तो कारमान बैगना में हुआ, जो कुछ भी हुआ तेरे में क्या हुआ, और वे कारमान बैगनाएं बनी रही, और फिर वो उदय काल में आकर तो फिर वो कारमान बैगना रूप हो गई, तो उसे भी उसी ने भोगा, तूने काम भोगा। और वो कहते कि मैंने क्या भोगा, कि जो तेरा राग भाव हुआ था वो तूने भोगा, तो जिस अपेक्षा से राग भाव का भोगता उसे कहते हैं, उस अपेक्षा से राग भाव का कर्ता भी कहते हैं। अब यहां कह रहे ज्ञानी उस राग का भोगता भी नहीं है, इसलिए ज्ञानी उस राग का कर्ता भी नहीं है। तो उसके चित्त में जो ये प्रश्न है कि कर्ता और भोक्ता एक होते हैं, यदि जी भोग रहा है तो उसे कर्ता भी होना चाहिए, तो उसको कहने में कहते हैं कि न तो जीव प्रत्ययो एकत्वम, जीव और प्रत्ययों में एकत्व नहीं है। वे कहां लाए हैं उस बात को, क्योंकि जीव प्रत्ययों में किसी अपेक्षा एकत्व मानेंगे तो फिर जीव को कर्ता और भोक्ता भी मानना पड़ेगा, क्योंकि पिछली गाथाओं में जीव अकर्ता अभोक्ता है और कर्ता तो प्रत्यय है, ये सिद्ध करके आए। अब जीव और उन कर्मों में माने गुणस्थानों में, तेरा गुणस्थान हो गया ना आपको कि मिथ्यात् अवृत्ति कसाय और योगी तो सामान्य प्रत्यय हो और तेरा गुणस्थान रूप विशेष प्रत्यय, ये एक पार्टी और जीव दूसरी पार्टी, और एक पार्टी और दूसरी पार्टी में एकत्व तो नहीं है, ये इस गाथा में बताना है। इस तर्क से सिद्ध करेंगे। अब जो गाथाएं पढ़ते हैं, जय जीवस्य अनन्नवे ओगो को हो वित जदी अनन्नो, कहता है कि जय जीवस्य अनन्नो उपयोग, जैसा जीव से उपयोग अनन्न है, ज्ञान दर्शन उपयोग है ना, और जीव दोनों एक ही है, जीव और वे दोनों एक ही गुण है, द्रव्य है, वो अनन्न है। ये अनन्न और अन्य अन्य का अर्थ क्या है? देखो यहां ये नहीं कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न है, ये कह रहे हैं अन्य अन्य है, दो भिन्नता दो तरह की होती है। सुनो, एक को बोलते हैं पृथकता और दूसरी को बोलते हैं अन्यता। अब इन दोनों में अंतर क्या है? प्रवचन सार के गेट तत्व प्रज्ञापन में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। कहते क्या अंतर है इनमें? जब दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता बताई जाती है तो उसे पृथकता बोलते हैं कि मैं पृथक हूं और ये रूमाल पृथक है, समझे ना? और जब एक ही द्रव्य के गुण और पर्याय के बीच में, द्रव्य और गुण में, द्रव्य और पर्याय में, गुण और पर्याय में, एक गुण दूसरे गुण में, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में जो भिन्नता बताई जाती है उसे बोलते हैं अन्यता। ध्यान रखो, क्योंकि फिर बाद में आपको ख्याल में इस तरह का प्रयोग बहुत आएंगे, अन्यता और भिन्नता में क्या अंतर है। स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपये पैसे और शरीर, इनसे मैं भिन्न हूं, मैंने पृथक हूं, और मोह राग देश और एक उपयोग, इनसे मैं अन्य हूं। राग देश में अपने में पैदा हुए, अपनी पर्याय है ना, एक हुए भिन्न और एक हुए पृथक और एक हुए अन्य। अब इन दोनों को ही भिन्न शब्द से प्रयोग कर देते हैं। अब हमें बारीकी से समझना पड़ेगा कि भिन्नता अन्यता के अर्थ में है कि पृथकता के अर्थ में है, और इसे हम प्रयोग तो वास्तव में बारीकी से ऐसे ही करना चाहिए, अन्यथा बहुत भ्रम फैल जाते हैं। लेकिन शास्त्र में भी नहीं ध्यान रखा इतना, जहां जैसी जरूरत पड़ी तो वहां उन्होंने भिन्न शब्द का प्रयोग अन्य के अर्थ में भी कर दिया और पृथक के अर्थ में भी कर दिया। तो अपनी अब वो तो शास्त्र वाले तो लिख गए, भजन वाणी में मौजूद है, भजन विद्वानों ने प्रवचन में कह दिया तो वो भी मौजूद है। अब हम उन पर दोष मढ़ने से तो हमारा काम चलेगा नहीं। अब हमें अपने ज्ञान को निर्मल बनाना है तो ये जिम्मेवारी हमारी है कि हम उस चीज को सही संदर्भ में समझें, कहां भिन्न है और कहां अन्य है। देखो ये दिक्कत कैसे होती है। मैंने 12 भावनाएं लिखी थी ना, तो जब संवर भावना लिखना शुरू की, होगा तुमको याद संवर भावना, तुम्हारे पास वो किताब है ना अभी, कौन अध्यात्म नवनीत है ना, उस तो उसमें 12 भावनाएं होंगी, तो उसमें संवर भावना निकालो। संवर भावना में यहां से शुरू किया है कि देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो है राग से भी अन्य है ना। अब ये बिल्कुल विवेक रख करके किया गया है कि ये वहां अन्य लिखा और वहां भिन्न लिखा। हम ऐसा कर सकते हैं ना इसे कि देह देवल में रहे पर देह से जो मन है हे राग उसमें किंतु वह राग से भी भिन्न। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो देह पर द्रव्य तो देह से भिन्न है और राग है उसी की पर्याय, इसलिए वो राग से अन्य है। इसमें क्या लगा, फिर उल्टा लगा क्या, समझिए ना। अभी इसी को मर्यादा को कायम रखना चाहिए थे आगे, लेकिन आगे नहीं रख पाए, क्योंकि उसमें थोड़ी दिक्कत आती थी। अब गुण भेद से भी भिन्न है पर्याय से भी पार है, अब गुण भेद से अन्य लिखना चाहिए लेकिन भिन्न है। अब तुम दोनों को पढ़ो एक जगह, दबे अन्य पढ़ो एक दबे भिन्न पढ़ो, तो तुम्हें अंतर मालूम पड़ जाएगा क्या तकलीफ है। गुण भेद से भिन्न इसमें अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार होता है ना, जानते हो ना, भेद और भिन्न, और अन्य करते हैं तो वह अनुप्रास खत्म होता है। चलो एक अलंकार की बलि चला दो, अपना अलंकार अपना कर्ता में अलंकार नहीं आया तो चलेगा, क्या दिक्कत है, क्यों। फिर भी उच्चारण में भी मजा नहीं आता। गुण भेद से भी भिन्न है, ये 25 दफे अन्य किया, 25 दफे भिन्न किया, फिर अंत में सोचा के भिन्न ही रहने दो। गुण भेद से भी अन्य इसमें उतना सॉफ्टनेस नहीं है, प्रवाह नहीं है, प्रवाह बाधित होता है। अनुसार जो अलंकार होते हैं वो भी कविता में कोई एक सुंदरता और अपनी कलाकारी के लिए नहीं रखे जाते हैं, वो उस वक्त उसकी प्रवाह की मांग होती है ना। गुण भेद से भी भिन्न है पर्याय से भी पार है, तो यहां आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहला जो भिन्न है वो पृथकता के अर्थ में है देह से, और ये दूसरा भिन्न है ये अन्यता के अर्थ में। अब इसमें ये दिक्कत हो गई कि ये सारे देश को सारी दुनिया को कौन समझाए, जगह जगह वह जाके पड़ेगा। कितनी बार मैं तुम्हें खोल के नहीं बताता अभी, तो शायद आप भी कभी इस बारे में नहीं सोच पाते, और शायद अभी तक बहुत दिन हो गए तो पढ़ते पढ़ते क्यों रमेश, लेकिन ध्यान में आई बात नहीं आई। ये दिक्कत है, इसलिए अन्य लिखना अच्छा था।
अब अन्य लिख देते तो अन्य और पृथक का अर्थ भी कौन, अंतर भी कौन समझता है, उसे हम लिख देते तो कौन समझता कि यहां इन्होंने अन्य इसलिए लिखा और यहां भिन्न इसलिए लिखा। वो तो समझता कि दो ही शब्द अच्छे नहीं लगते तो एक जगह अन्य कर दिया, एक जगह भिन्न कर दिया, समझिए ना। तो मेरे कहने का ऐसा हमने क्यों किया फिर, क्योंकि पहले आचार्यों ने भी किया है और हर जगह मिलता है। हम एक जगह सही भी कर देंगे तो उससे क्या होने वाला है, आखिर तो आपको को ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने विवेक से निर्णय करनी है, ये जिम्मेवारी आपको स्वयं ही लेना पड़ेगा, तभी आप अपना सही अर्थ समझ पाएंगे और अपना कल्याण कर पाएंगे। ये मतलब ये आपको समझना पड़ेगा, ये हम पुराने आचार्यों पर मीनमीख निकाल करके काम नहीं कर सकते सर, इसलिए मैंने तुमको ये भावना निकलवाई थी। सुनो, अब उपयोग जीव अनन्य शब्द का प्रयोग है ना, अब क्योंकि क्रोध यानी उपयोग माने ज्ञान दर्शन, ये आत्मा का के गुण है, जानना देखना आत्मा की पर्याय है, तो वो इनसे अन्य अन्य नहीं है, तो अन्य अन्य नहीं के विरुद्ध होता है अनन्य, और वो है ना भिन्न के अर्थ होगा विरुद्ध होगा अभिन्न, पृथक के विरुद्ध होगा अपृथक। अभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी जब तुम 14वीं गाथा पर आओगे तब शांति जी आपको समझाएंगे, अभी तो साल अभी कौन सी 9वीं 10वीं चल शुरू हो रही है ना, 14वें में आएगा, वहां आएगा। 5 बोले ना, अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त। तो वो जो अनन्य शब्द यहां लिखा ना, वो अनन्य वहां आएगा, तब वो समझाएंगे कि अनन्य माने क्या, अन्य अन्य नहीं है, लेकिन इसका अर्थ आप पृथक पृथक नहीं है नहीं कर सकते। इतना काम मैं उनका हल्का कर देता हूं तुम्हारे लिए, कि अनन्य पद में ख्याल में है ना, क्या काय का विषय कि मनुष्य अलग है और देव अलग है, अन्य अन्य है, अनन्य नहीं है, क्योंकि वे एक ही जीव की दो पर्याय है ना, इसलिए वो अन्य शब्द है ना। उपयोग जीव अनन्य जो कुछ आप समझ में आ रहा ना, क्या कह रहा हूं, गप नहीं मार रहा हूं मैं, उसका ही अर्थ बता रहा हूं आपको, और ऐसा बता रहा हूं कि जो हर जगह आप लगा करके गहराई से समझ सके। क्यों जीव क्रोध अनन्य हो, यदि उपयोग जैसे अनन्य है ऐसे क्रोध भी जीव से अनन्य हो। वो कहना चाहते हैं कि क्रोध अनन्य नहीं है, उपयोग अनन्य है और क्रोध अन्य है। जो उपयोग जीव अनन्य ज्यों, यदि त्यों ही क्रोध अनन्य हो, ठीक उसी प्रकार क्रोध भी जीव से अनन्य हो, तो जीव और अजीव दोनों एक ही हो जाएंगे। तो जीव अजीव में फर्क ही क्या रहा, जीव से क्रोध है अजीव और आत्मा है ज्ञान है जीव, जैसा ज्ञान अनन्य है ऐसा क्रोध भी अनन्य हो जाएगा, तो जीव और अजीव एक हो जाएंगे। समझे अर्थ आ गया ना, ख्याल में बोलकर देखो, ये जो बात मैंने आपको समझाई है, अब इस छंद गाथा को पढ़ो तो पद्यानुवाद को, तो तुम्हारी समझ में एकदम साफ साफ आ जाएगा, इसको अनुवाद में कोई कमी नहीं है। आपने बुद्धि नहीं लगाई तो हम क्या करेंगे, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। उपयोग जीव अनन्य ज्यों, यदि क्रोध जीव यदि ज्यों, यदि त्यों ही क्रोध अनन्य हो, तो जीव और अजीव देखो अब प्राकृत की गाथा देखो किस तरह से उनको अनुसरण कर रहा है। जय जीव से अनन्नो उपयोगो, जिस प्रकार उपयोग जीव से अनन्न है, को हो भी ते अनन्नो, क्रोध भी उसी प्रकार अनन्न हो, तो जीवा जीव से जीव और अजीव में तो एक अनन्नत्व मावन्नम अनन्नत्व हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही का वही है ना, उसमें पूरी गाथा से आप पद्यान बाद में सब बात स्पष्ट हो जाती है। नीचे गद्य नहीं लिखे नहीं पढ़े तो चलता है ना। यदि जीव और अजीव दोनों एक हो तो इस तरह का दोष प्रत्यय कर्म अर्णो कर्म में भी आएगा। ये ऐसा अनुवाद है जिसमें आपको अन्वय नहीं करना पड़ेगा। अन्वय जानते हो ना, संस्कृत में पढ़ते रहो आगे पीछे करना पड़ता है ना, वो बिल्कुल नहीं है? इस तरह का दोष मैंने दो पंक्तियों में बराबर जो जुड़ रहा है, ऐसा नहीं भाई पंक्ति खत्म हो गई। इस तरह का दोष खैर समझे ना, यदि हम कहते मान लेंगे, हम तो क्रोध को और उपयोग जैसे अनन्न है जैसा हम क्रोध को भी अनन्न मान लेंगे, वो कह हमें क्या दिक्कत है, हम मान लेंगे। तो वो ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें ये दिक्कत होगी, वो ये कहते हैं कि तुम इसे मानोगे तो फिर कर्म को भी अनन्न मानना पड़ेगा। फिर नो कर्म माने शरीर आदि संयोग स्त्री पुत्र आदि, फिर इनको भी अनन्न मानना पड़ेगा। क्या यदि तुम ये करोगे तो इनको भी मानना पड़ेगा, समझे ना। अभी होता है ना अपने कि भाई अपने विद्यालय में एक विद्यार्थी भर्ती होना था तो वो कोई मिनिस्टर की सिफारिश लेके आ गया और उसके थे 52%, और वहीं जब वो उसे भर्ती करने लग गए क्योंकि मिनिस्टर की शिकायत थी तो वहीं 54% वाला खड़ा था। तो उसने कहा कि तुम इसे करोगे तो मुझे भी करना पड़ेगा, वो याद नहीं ना। अब देखिए कि मुझे करने में तो मैं तो 54 हूं, ये तो 52 नहीं है, ख्याल में नहीं ना। वो कहते हैं कि ये तीनों का एक ग्रुप था, क्रोध माने भाव कर्म और द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये तीनों से भगवान आत्मा भिन्न है ना। क्यों कम में नो कम मम्मी अरे मिद मैं कम से कम में नो कम मम आता मैं नहीं आता। तो वो कहते हैं तुम तीनों को एक ग्रुप को एक को नहीं तीनों को लेना पड़ेगा। आखिरकार उसे क्या करना पड़ा, चलिए मैं इसे भी नहीं लूंगा, ये नहीं कह सकता सब तुम भी आ जाए बेटा। यहां भी वही करना पड़ा ना इसको कि नहीं 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 भैया, यदि शरीर को भी अपना मानना पड़ेगा, स्त्री पुत्र को भी अपना मानना पड़ेगा तो मैं नहीं मानता। क्या पकड़ा है क्या, यदि जीव जो बिल्कुल भाषा देखो, यदि जीव और अजीव दोनों एक हो तो इस तरह का दोष प्रत्यय कर्म अरणो कर्म में भी आएगा। ये मैं गाथा इसलिए समझा रहा हूं कि मैं जो आपसे पाठ कराता हूं वो इसलिए कराता हूं कि आपको ऐसा जब पाठ करो तो ऐसा अर्थ समझ में आता जाना चाहिए। जो अपने आमनाय नाम का स्वाध्याय है ना वो इसका नाम है। कल आपसे हमारे समय कुछ नहीं आ रहा, हमने भक्तांबर का पढ़ लिया पूरा, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कहने साहब कुछ तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पुण्य बंद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्यों कुछ होना चाहिए नक्की करना है ना आपको, तो होगा आपका गला खराब होगा, आपका आधा घंटा का समय खराब होगा, ये मनुष्य का बहुत कीमती समय आपका चला जाएगा। ये संसार रंच मात्र भी कम नहीं होगा, बस इतना आप समझ लेना। ये बहुत स्पष्ट है बात, ये कहना भले ही बहुत कठिन हो, ख्याल रहे ना, मैं ये यहीं रखा। क्या समझ में आया, वस्तु स्थिति है, क्योंकि गले में तकलीफ उठाई है और गले में तकलीफ होगी तो गले तकलीफ से अच्छा थोड़ी होता है। खूब चिल्ला चिल्ला करके तुम कि सारा गांव सुन ले और चिल्ला चिल्ला के भक्तामन का पाठ करो, लेकिन उस पंक्ति का भाव तुम्हें भासते ही नहीं हो, क्यों तो रट लिया है नहीं? तो उससे और क्या होगा बोलो, मोहल्ले वाले डिस्टर्ब होंगे कि नहीं साहब उन्हें भी लाभ मिल जाएगा भक्तामन के पाठ का, उन्हें क्या मिल जाएगा, कुछ अर्थ तो समझ में उनके आएगा नहीं। ऐसे देवर्षि का लाभ किसी को कुछ नहीं मिलता है, क्या? यदि जीव और अजीव दोनों एक हो, यदि इस तरह उन्हें नहीं कहा जीव और क्रोध एक हो तो नहीं कहा, क्योंकि क्रोध को अजीव तो हम सिद्ध करके आए हैं ना पीछे, क्योंकि हम क्रोध कहेंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम यहां उसको अजीव नाम से ही पुकारेंगे। अब हम कह रहे वो बात कर रहे हैं अजीब की बात, तो क्रोध भी चल रही थी अजीब कहने लगे, लेकिन हम क्रोध को अजीब सिद्ध करके आए हैं ना, अब उसे हम अजीब के नाम से पुकारेंगे, अब हम क्रोध के नाम से नहीं पुकारेंगे। फिर तो कहते अच्छा अच्छा द्रव्य क्रोध, द्रव्य क्रोध को दे लो, अरे भैया वो तो कर्म में जाएगा, जब कर्म और नो कर्म में भी इस प्रकार का दोष आएगा ये कह रहे, तो ये जो है वो द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म है। राग नामक आत्मा की जो विकारी पर्याय है उसको कह रहे हैं, यानी अध्यात्म में जो इसको पुद्गल कहा है, यदि वो आपके गले नहीं उतरी तो सारा प्रकरण गले नहीं उतरेगा, क्या? क्योंकि अभी सारे तर्क वितर्क तो उसी के आधार पर चलेंगे, सारा राजमहल तो हमने उसके आधार पर खड़ा किया, और राजमहल जिसके आधार पर खड़ा किया है यदि वो ही बात सिद्ध नहीं भई तो बाकी की लंबी चौड़ी बातें कैसे सिद्ध होंगी, है ना? क्यों? एक लड़का लड़की की सगाई हो गई और सगाई के बाद में भी ये नक्की हो गई कि इस तारीख को बारात आएगी, इस तारीख को लगन आएगी, इतना आएगा, इतने बाराती आएंगे, इतना भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन का मेन्यू ये होगा, ख्याल में है ना, ये भी तय हो गया कि मेहमानों को क्या देंगे आप और किसको क्या करेंगे, वो सब बातें तय हो गई। अभी ब्लाइज साहब एक प्रॉब्लम आ गई, बैठे क्या कि लड़का मना कर रहा है, क्या लड़की को दे दे सम्मान, जब वो लड़का राजी नहीं कि लड़की राजी नहीं है, क्या करें? कि कोई बात नहीं, इस बारे में बाद में सोच लेंगे, अब पहले बराती कितने आए वो तो बता दो, क्योंकि वो व्यवस्था करनी है, क्यों क्यों उनको क्या क्या देना है, पागल हो गया है इसको फिर सोच रहे, कोई चिंता की बात नहीं है, पहले और बाकी का तो सब निर्णय कर लो, चलेगा जैसा। वो कहते भैया क्रोध को अन्न मान लोगे तो बाकी की चर्चा हो ही नहीं सकती, सबसे पहले इसी मुद्दे पर निर्णय करना पड़ेगा, तो बाद में बाकी की चर्चा होगी, क्योंकि इसको नहीं मानते ही फिर शरीर को, यदि इसको आनंद मानोगे तो शरीर को, नौकर्म को, गहना वर्णादि कर्मों को, स्त्री पुत्र को, सबको अनन्य मानना पड़ेगा, इतनी बड़ी वो है। यदि जीव और अजीव दोनों एक हो तो इस तरह का भेद का दोष प्रत्यय कर्म अरनो कर्म में भी आएगा, क्रोधान है अर अन्न है उपयोग में यह आत्मा, तो कर्म अरुनो कर्म प्रत्यय अन्य होंगे क्यों नहीं। यदि तुम कहो कि क्रोध अन्य है और आत्मा अन्य है, यदि तुमने ये मान लिया तो अब सिद्ध करने की जरूरत है कि शरीर अन्य है, गाना वर्ण आदि कर्म अन्य है, स्त्री पुत्र आदि करने, तो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। बोलो इन गाथाओं का अब इससे ज्यादा सरल प्रत्यानुवाद हो सकता है, इसमें प्रवाह है, बोलने में कहीं रुकावट नहीं है, ख्याल नहीं ना, और भाव भी पूरी तरह से अक्षर टू अक्षर सामने आ रहा है, ख्याल नहीं ना। देखो मैंने कहा था, आपको बताया था पहले, कभी फिर दोहराता हूं कि नाटक समय सार पंडासी दास जी का बहुत ही बहुत अच्छा महानतम ग्रंथ है, और फिर अपन ने कलश पद्य अनुवाद लिखा, जबकि वो भी ऐसा ही माना जाता है कि कलशों के आधार पर ही लिखा गया है, ख्याल नहीं ना। अब दोनों में अंतर क्या है ये समझो, अंतर समझ में आएगा तो इसके लिखने की जरूरत थी कि नहीं थी ये बात भी सामने स्पष्ट हो जाएगी। उसमें तो उनने पूरा समय सार का कलश, ने समय सार बाद में पढ़ा, कलश टीका पहले पढ़ी, उनको मिली थी क्योंकि वे संस्कृत के विद्वान नहीं थे, ध्यान से सुनना, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना, ये निंदा नहीं है, फैक्ट है। तो पांडे राजमल जी जो थे उनने कलश टीका लिखी थी, वो उनको किताब दी गई सबसे पहले पांडे रूपचंद जी के द्वारा। ये पांडे रूपचंद जी कौन है? हरि रूप चंद सुदेव जिनवर जगत मंगल गावी, पंच कल्याण के हैं, बोलते थे वो रूपचंद जी वो है। तो उनने कलश टीका दी, तो उनने कलश टीका के आधार पर कलशों को पढ़ा, वो अर्थ समझा, सीधा संस्कृत तो समझ नहीं सकते थे, तो जो उनके दिमाग में स्पष्ट हुआ और जो जो भाव जब जब जमता गया तब तक वैसे वो कवित्व लिखते गए। ऐसा नहीं पहले से पहले गाथा से शुरू की हो अंत तक लिखी हो, सब शुद्ध ज्ञान के आगे आज लिख दिए, जीवा जीवा अधिकार के 10 दिन बाद लिखे क्या? वो कोई बंध के आज ही से अंत तक उनने अनुवाद नहीं किया, जो जो वस्तु स्थिति उनके दिमाग में स्पष्ट होती गई कलश टीका के आधार पर उन्होंने खुद लिखा है, उसमें उसकी प्रशस्ति पढ़ो अंत में, पांडे राज मल्ल जिन धर्मी नाटक समय सार के मन में तीनी तिनकीनी है बालबोध टीका, उसे पढ़कर मैंने समझाया, मुझे रूपचंद जी ने ये बात दी, ये लिखा है उसमें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उनने खुद लिखा है उसी में। अब क्या हुआ कि बाद में जब पूरे छंद लिखे गए, और बनारसी दास इतने लोकप्रिय कवि थे कम से कम जैनियों में, जैनी अजैनों में भी, कि उनके नाटक समय सार के कवित्व आगरा की गलियों में वैसे ही गुनगुनाए जाते थे जैसे आजकल सिनेमा के गाना गलियों में गुनगुनाए जाते हैं। क्या क्या समझ रहे हैं? इतने लोकप्रिय थे, लोगों को कंठस्थ हो गए थे और गुनगुनाते रहते थे, बोलते रहते थे मंदिर में, साथ सभा के बाद में, पहले ऐसा, फिर बाद में उनने या उनके स्वर्गवास के बाद उनके अनुयायियों ने उन सारे छंदों को इकट्ठा किया और फिर उसे व्यवस्थित क्रम से जमाया, समझ में आया ना, और जमा कर उनने एक ग्रंथ कर दिया तैयार। इसको इस तरह से व्यवस्थित कर दो तो एक ग्रंथ हो गया तैयार। फिर वो बनारसी दास जी इस समय बालबोधिनी टीका को पढ़कर भ्रष्ट हो गए थे, उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नगन होए चारों जने फिरे कोठरी माई। चार, एक तो ये बनारसी दास और इनके तीन साथी और थे, एक कमरपाल थे, वो नाम सब उन्होंने लिखे हैं। चार आदमी मिलकर एक कमरे में बंद हो जाते थे, अंदर से चटनी लगा लेते थे और नंगे हो जाते थे, वो कहते थे हम 2 घंटे के लिए मुनि हो गए। तो कठू परिग्रह नंगन हो ये चारों जने फिरे कोठरी माई, और कहें हमें दिगंबर हुए कछु परिग्रह नाई, और हमारे पास कोई परिग्रह नहीं, ऐसी दशा हो गई थी। तो लिखा भई बनारस की दशा यथा ऊंट को पाद, ऐसा लगा बनारस की दशा ऐसी हो गई, ख्याल में आई ना, कि ऊंट का पाद। ऊंट का पाद क्या है? एक तो पाद के दो अर्थ होते हैं, एक तो पैर कदम, तो ऊंट के कदम पैर चलते हैं ऐसे 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 टेढ़े टेढ़े चलते हैं, सीधे नहीं चलते, देखना कभी, ऐसे हम एड़े टेढ़े चलने लग गए, जिन मार्ग में सीधे सीधे नहीं चले। और एक एक होता है जो अपने अपान वायु निकलती है, उसे भी पाद उगलते हैं, तो उसे फुर निकल जाती है, ऐसे मुंह से फुर समय सारी की बातें बोलते हैं पर समझ में कुछ आता नहीं, सही बात समझे नहीं। भई बनारस की दशा जैसा ऊंट को पाद, ख्याल में ना, ये लिखा उनने, तो उनको ये लगा कि एक उनकी फिर वो दुर्दशा सुधरी कैसे, तो उन्होंने लिखा कि रूपचंद जी पांडे आए आगरा में और वे गोमठ सार के जानकार थे, तो उन्होंने इन्हें गुणस्थान पढ़ाए कि भैया हर एक आदमी की दशा गुणस्थान के अनुसार होती है, तुम्हारा छठवां सातवां गुणस्थान हो गया क्या, ऐसे नंगे होने से तुम मुनि नहीं हो गए, फिर दो घंटे को हो गए, फिर बाद में कपड़े पहन लिए तो ग्रस्त हो गए, ऐसा नहीं होता है, ये बाहर के कपड़े पहनने में बदलने से कुछ नहीं होता, वो तो अंदर के परिणामों के आधार पर सारा निर्भर है। और उन्होंने वो गुणस्थान पढ़ाए तो उनकी समझ में कुछ आई, इसलिए उन्होंने उस समय नाटक समय सार की जो विषय वस्तु नहीं थी, एक गुणस्थान अधिकार वो नाटक समय सार में जोड़ दिया। क्या अब क्या जोड़ा उसमें, एक एक और समझना बहुत मरम की बात है, ये गुणस्थान अधिकार तो जोड़ा, करुणानि योग जोड़ा होगा, नहीं नहीं करुणानि योग तो बहुत कम, करुणानि योग जोड़ा, करुणानिधि गुणस्थान का क्या काम है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में जीव की कैसी दशा होती है, पांचवें में कैसी होती है, ये वर्णन किया, और एक सामान्य जैनी का जीवन कैसे होना चाहिए वो वर्णन सब किया। ये जो 22 अवक्षों के नाम आते हैं दादा, ओला घोर परामृश भोजन बहु बीजा वैग अनुसंधान, ये नाटक समय सार का छंद है जो बनारसी दास ने लिखा कि पहले ये तो छोड़ो, 22 अवक्ष छोड़ो, 11 प्रतिमाओं का स्वरूप लिखा, इन सबका बहुत डिटेल वर्णन अच्छी तरह से किया। तो चौथे गुणस्थान में पांचवें गुणस्थान में जो हमारे श्रावक का आचरण होता है ना, उन्हें जो उनकी खुद की भूमिका थी जो उन्हें उन्हें बताई थी रूपचंद जी ने, और जिसकी कि भैया तुम्हारे ऐसे छोड़ने से तुम साधु नहीं हो गए, इसकी प्रक्रिया ऐसी गुणस्थान प्रमाण ऐसी है, और कौन से गुणस्थान में कौन सा आचरण होता है वो उन्होंने उसमें लिखा। तो इस तरह अध्यात्म करुणा द्रव्यान योग के अध्यात्म से, जो यदि तुमने थोड़ा करुणानि योग नहीं पढ़ा और थोड़ा गुणस्थान को नहीं समझा करुणानि योग, तो अध्यात्म के साथ में एक खतरा है। और ऐसे आदमी थोड़े प्रतिभाशाली हो जाएं तो वे सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो जो मूर्ख होता है वो तो अकेला अपने को बिगाड़ता है और वो हजारों को बिगाड़ता है प्रतिभाशाली। अब बनारसी दास कवि थे, श्रृंगार की कविताएं लिखा करते थे, अब उन्होंने इसकी भी लिख दी, यदि वो नहीं सुधर पाते तो ऐसी ऐसी कविताएं लिख के रख जाते और हम जैसे जैसे पागल उनको रखते बोलते रहते थे, क्योंकि वो तो पहले भी बनारस आगरा की गलियों में छंद बोले जाते थे, ये तो बाद में लिखे गए। तो ये इस तरह का वो चीज है, तो उसमें क्या है कि हर कलश का पद्यानुवाद नहीं मिलेगा, आप देखना। अभी हमने ये कोशिश की जो नाटक समय सार छापा कि कौन से कलश का पद्यानुवाद कौन सा छंद है, तो ये तो हम लोगों ने संपादन में करने में हमने हमसे पहले लोगों ने भी किया होगा, उसको सेट किया है कि ये इसका होगा, पूरा हूबहू नहीं मिलता है वो, और बीच में कई छंद छूटे भी हैं और जिनका नहीं है, और एक छंद में कम से कम 10 छंद मिल जाएंगे कहीं कहीं, समझ गए ना। उन्होंने एक एक छंद का अक्षर अक्षर देख के उसके हिसाब से अनुवाद नहीं किया, और अपन ने किया वो एक एक शब्द का एक एक अक्षर देख के मिलान करके पूरी तरीके से ऊपर से नीचे मिलान करोगे तो पूरा मिलेगा, हेल्प में ही ना। इसलिए वो दोनों का अध्ययन सेपरेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो सौंदर्य है वो अपनी चीज है और इसमें जो है वो बिल्कुल अलग, दो चीजें अलग अलग है। ये अंतर आपके ख्याल में आए ना, वहां हर छंद का पैसा नहीं मिलेगा। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, कोई आदमी धोबी के सदन गयो, पैरों परायो वस्त्र और अपनो मान लियो है, ये छंद पढ़ते हो ना। अब देखो कौन से कलश का पद्यानुवाद है ये बताओ, कोई कलश ही नहीं है ऐसा। तो क्या है कि आत्मख्याति जो टीका है उस टीका में है। अब उस राजमल जी ने वो कलश टीका लिखी तो साथ में वे संस्कृत के विद्वान थे तो उन्होंने वो आत्मख्याति भी पढ़ी थी, तो वो उदाहरण उठा करके उन्होंने अपनी कलश टीका में लिख दिया। तो इन्हें तो कलश टीका पढ़ी थी, वे समझ रहे कलश का ही विजय का अनुवाद है, तो उन्होंने वो उदाहरण इसमें लिख दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से छंद ऐसे मिलेंगे जो आत्मख्याति में से बनाए गए हैं, जो कलश है उसमें नहीं है, और आत्मख्याति में भी उन्हें नहीं पढ़ी। आत्मख्याति में से भी जो भाव कलश टीका में उनने आत्मख्याति का हिस्सा दे दिया, बस उनने तो उसको समझ लिया और बस उस पर कवित्व बना दिया, उसी दिन जिस दिन पढ़ा उस दिन बना दिया। आज अपन ने ये पढ़ा तो आज आपको ये बना दिया, कल वो पढ़ा तो वो बना दिया, जो चर्चा चली उसको बना दिया। ऐसे यदि आप जो है इतनी मेहनत करो तो करो फिर आगे पीछे। अब जो मैंने आपको इतनी अध्ययन करके ये सब बताया है, आप इससे ज्यादा अध्ययन करके तब फिर इसमें कोई नया कमेंट्स कर सकते हो क्या, और बारीकी से उसको देखो तो कर सकते हो। तो कहां फुर्सत, किसको फुर्सत है उसकी, हो गया ना। जितने क्रोधान है अर अन्न है उपयोग में आत्मा, तो कर्म अरुणो कर्म प्रत्यय अन्य होंगे क्यों नहीं। जब तो आत्मा का विकारी परिणाम क्रोध कोई हमने अन्य कह दिया तो वे तो अन्य है ही, वास्तव में वे तो भिन्न है, लेकिन इन्हें तो वहां अपनी बराबरी पर रखना है तीनों को। कौन कौन को, भाव कर्म, दीर्घ कर्म और नो कर्म, इसलिए उनको भी अन्य अन्य कह दिया, समझ गया। क्योंकि समय साल की ये टोन है, कम मे नो कम मम्मी है मिन मै कम च कम नो कम मन, कम से परिणामम नो कम से तहिद परिणामम। पहली पंक्ति बोली है मैंने 19वीं गाथा की और दूसरी पंक्ति बोली है 75वीं गाथा की, क्यों उन्होंने तीनों से भेद विज्ञान कराया है तो एक साथ कराया है। अब ये बारीकी में अभी लोग आपको नहीं लेना चाहते हैं कि अन्य है कि भिन्न है, क्योंकि अभी तो उन्हें एक साथ सिद्ध करना है ना, तो जो जिससे भिन्न होगा वो अन्य तो है ही है, अन्यता वाली जो पृथकता है वो जरा कमजोर है और भिन्नता पृथकता वाली जो भिन्नता है वो जरा मजबूत है। तो जब ये ही भिन्नता है तो वो तो होगी ही होगी, ख्याल में नहीं ना। देखो अब मैं नहीं समझता हूं कि गाथा का अर्थ पढ़ने की अपन को जरूरत है, अब अपन टीका पढ़ते हैं। अब उसमें कुछ माल ले नहीं गया है, जाना पढ़ लेंगे तो आज अपन इससे आगे आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार जीव के उपयोगमयी होने के कारण जीव से उपयोग अनन्य है, उसी प्रकार यदि ऐसी प्रतिपत्ति की जाए कि जड़ क्रोध भी जीव से अनन्य ही है, तो चैतन्य रूप जीव और जड़ क्रोध के अनन्यत्व के कारण जीव में उपयोगमयता के समान जड़ क्रोध मयता भी आ जाएगी। देखो बार बार जड़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, क्योंकि तुम क्रोध को, लेकिन ये वो क्रोध कारमान बिगड़ना वाला नहीं है, ये आत्मा का क्रोध जो है प्रजा उसको जड़ कह रहे बार बार, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है कि वो तो चेतन है, वो तो चेतन का परिणाम है। इसलिए मूल संस्कृत में यही है जो मैंने अभी हिंदी में पढ़ा, पढ़ो संस्कृत पढ़ना। यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वात् जीवाद् अनन्या उपयोगा तथा जड़ा क्रोधा अपि अनन्या एव प्रतिपत्ति, है ना, बिल्कुल हूबहू लिखा कि नहीं, हूबहू है बिल्कुल, अक्षर अक्षर है, घबराना नहीं, घर पे शांति से मिला लेना, संस्कृत जो जानते हैं वो मिला लेना। ऐसा होने पर भी जो जीव है वही अजीव सिद्ध होगा, इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा। अब ये टीका उन्होंने नई बात जोड़ी है कि इससे क्या दिक्कत है, हो जाए तो वो जीव अजीव हो जाए, हो जाए क्या अजीव जीव हो जाए, हो जाए तो अरे वो कह रहे हैं आगम में नहीं है, नहीं रहें तो हमें क्या दिक्कत है, कि साथ में लिखा लिखा होगा कि तू तो साथ से भाई शंका करता तेरे से क्या बात करें, है हो जाएगा तो कहते भैया पहले दिन का पाठ खत्म हो जाएगा कि द्रव्य दो हैं जीव और अजीव, जीव और अजीव अनन्न हो जाएंगे तो दो प्रकार के द्रव्य ही नहीं रहेंगे, तो कि नहीं रहे, नहीं रहे तो क्या भाई साहब तेरे से हमें बात नहीं करना, तुझे तो कुछ भी कहे हाँ चले जाएंगे, दे जाएंगे चले जाएंगे, हैं? एक सही घटना सुनाता हूँ, दादा अपना नाम जानते हुकुम चंद तन्मय बुखारी जी ना कवि, वो सुनाते थे कि वो जब भारत का आंदोलन चलता था ना स्वतंत्रता का, तो वे भी उस आंदोलन में भाग लेते थे, अच्छे कवि थे, वैसे लोग तो बहुत ज्यादा भाग लेते ही हैं, फिर जब जाए सबकी गिरफ्तारियां हुई तो वे सब छिप जाते थे, अंडरग्राउंड हो जाते थे, तो वे भी अंडरग्राउंड हो गए। अब उनका एक दोस्त आया उनके पास मिलने, बोले चलो साहब जब हम बाजार में चाय पियेंगे ऐसा करेंगे, कहने भैया मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और मेरा वारंट निकला हुआ है तो मुझे परस ले जाएगी, यहीं कैसे पकड़ जाएगी, मेरी जिम्मेवारी, बहुत मना किया माने नहीं कि मेरी जिम्मेवारी मेरी जिम्मेवारी, पुलिस साहब उसके साथ चले गए, चले गए तो वहां जाकर पुलिस आई वो पकड़ लिया, तो मैंने कहा भैया क्या कि मैंने कहा ना मेरी जिम्मेवारी, उसने हद कर ही डाल दी, पुलिस ले जाने लगी, कहा भैया तेरे से मैंने कहा था ना कि मैं कब बदलता हूं, मेरी जिम्मेवारी है ना कि हम जेल ही चले जाएंगे, अब तेरी किस बात की जिम्मेवारी है तो बता, ऐसे जो आदमी गैर जिम्मेवार है मतलब गैर जिम्मेवारी से बयान देते हैं कि मेरी जिम्मेवारी क्या कीमत है उसकी, सास में लगा लिखे ना तो ऐसा हो जाएगा, हो जान दो सारे अजीब हो जाएंगे, हो जान दो इन मूर्खों के साथ चर्चा करना भी अच्छा नहीं है, इनकी बात सुनना नहीं अच्छा है, आप समझ रहे ना, देखो इसी प्रकार का दोष प्रत्यय कर्म और नो कर्म को भी जीव के साथ अनन्य मानने पर आएगा, अकेला क्रोध ही तो जीव अनन्य नहीं होंगे बल्कि कर्म नो कर्म शरीर ये सब जीव हो जाएंगे या फिर जीव ही अजीव हो जाएगा। यदि इस दोष से बचने के लिए कि दोनों एक ना हो जाए यह स्वीकार किया जाए कि उपयोगमयी जीव अन्य है और जड़ स्वाभाविक क्रोध अन्य है, देखो तो जिस प्रकार उपयोगमयी जीव जड़ स्वाभाविक क्रोध से अन्य है उसी प्रकार जड़ स्वाभाविक प्रत्यय कर्म नो कर्म भी उपयोगमयी जीव से अन्य ही सिद्ध होंगे, क्योंकि उनके जड़ स्वभावत्व में कोई अंतर नहीं है, जैसा जे अजड़ स्वभाव है वैसे वे जड़ स्वभाव है, जिस प्रकार क्रोध जड़ है उसी प्रकार प्रत्यय कर्म नोकर्म ये भी जड़ है, इस प्रकार जीव और प्रत्ययों में एकत्व नहीं है। आगे ने क्लियर होगी बात, देखो अब इसमें देखो क्या क्या वीकनेस है, जरा समझना, यहां पर क्रोध को वैसा ही जड़ मानकर बात की जा रही सारी की सारी, यदि वो जिस अपेक्षा से क्रोध चैतन्य की पर्याय है वो बताएंगे खुद, तो उस अपेक्षा से सारी बात फैल हो जाएगी, क्योंकि मेन आधार तो ये है कि हम क्रोध को जड़ मान के सारे तर्क दे रहे हैं, वो अब वो मेन बातें सिद्ध नहीं हो तो और वो उसमें हमें शंका है कि गुस्सा जो हमें आता है वो उसमें रूप रस गंध स्पर्श तो है नहीं, और पुद्गल तो उसे कहते हैं जिसमें रूप रस गंध स्पर्श होता है। इसलिए जो अध्यात्म की शैली को नहीं जानते उनके गले उतारना बहुत कठिन है। वे आकर के होमर साल निकाल निकाल के बताएंगे, ये बताएंगे देखो ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, ये श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है, मनसा तो इसे तुम पुद्गल कैसे कह सकते हो, इसमें रूप रगंध स्पर्श नहीं है, तत्वासूत्र में लिखा है स्पर्श रगंध बर्णवर्ता पुद्गला, हजार प्रमाण पेश कर देंगे और उनकी बात शास्त्र के अनुसार तो है ही, अब जनता में उनको भी गले उतर जाएगी क्योंकि वह स्थूल है। अब तो अध्यात्म की ये शैली है क्यों न्यारो पूत पड़ोसी बराबर, तुम तो ये कह दिया कि न्यारा हो गया तो पड़ोसी जैसा है, जैसा पड़ोसी का कभी सहयोग मिल जाएगा तो उसका मिल जाएगा, रोजीना की रोटी डाल को तुम्हारी बना के नहीं खिलाएगा, उसकी पत्नी तुम्हारी रोजीना की सेवा नहीं करेगी, अस्पताल में जाओगे तो जैसे पड़ोसी जाएंगे तो वो भी आ जाएगा, तो उसे तुम्हारा काम तो चलने वाला नहीं है ना। अगर कैसी बात करते हो ना, पूत पड़ोसी वाला कैसे हो सकता है, उसके तुम सगे माँ बाप हो, म्यूनिसिपैलिटी में नाम लिखा है तुम्हारे पड़ोसी का, तुम्हारे म्यूनिसिपैलिटी में कहीं नाम लिखा ही नहीं है। अब तुम बहस करोगे, लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल कैसे हो सकता, बेटा पड़ोसी जैसा कैसे हो सकता, बेटा तो बेटा है। अरे तुम उस अपेक्षा बात करो, यदि तुम अपनी अपेक्षा पर सही खड़े नहीं रहोगे तो ये बात भी समझाना बहुत कठिन काम है कि न्यारा पूत पड़ोसी के बराबर होता है, ये भी हम किसी के गले नहीं उतार सकते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए कहते हैं ये अध्यात्म की अपेक्षा को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सारा राजमहल इसी के आधार पर खड़ा किया गया है। बाकी करते